आत्मभावना लेक्चर नंबर 11। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणम्,
नमो सिद्धाणम्,
नमो आयरियाणम्, नमो वर्षायाणम्, नमो लोए सौवसाऊणम्। येनात्मा बोध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम्, अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आत्मभावना की जो ये पुस्तक है, वो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के समाधि तंत्र ग्रंथ पर हुए जो प्रवचन है उसके पृष्ठ संख्या 24 पर हम आगे 24। कल हमने पांचवा नंबर का श्लोक पढ़ा था, वहां तो हमने समाधि तंत्र में से भी पढ़ा, उसकी टीका भी देखी है, इसका विशेष भी देखा है। अब यहाँ से हम उसका पढ़ रहे थे, पृष्ठ संख्या 24 पर हम आ गए, जो नया पैराग्राफ शुरू होने वाला है बीच वाला बड़ा, उसको वहां से हम देखेंगे। सिद्ध भगवान जेवी ताकाती भरेलो आ आत्मा नो स्वभाव छे। आ आत्मा कहते वो साक्षात सामने विद्यमान है उसकी बात करें। तेने भूली ने अज्ञानी जीव बाह्य विषयों में सुख दुख की बुद्धि थी दिन रात बड़ी रहो छे। बुद्धि ने मान्यता, विपरीत मान्यता है ना, यहाँ पर बाह्य पदार्थों से, बाह्य विषय ने बाह्य अन्य पदार्थों से मुझे सुख या दुख मिलेगा, ऐसी खोटी कल्पना, उसको कहेंगे बाह्य विषयों में सुख दुख की बुद्धि थी। क्या हो रहा है? दिन रात बढ़ी रहो छे, इन्हें आकुलित हो रहा है, दुखी हो रहा है। बाह्य मां अनुकूल प्रतिकूल संयोग मळवो ते तो पुण्य पापना बंधनु फल छे। पूर्वे पुण्य पाप थी जे शुभ शुभ कर्मो बंधाया तेना फल मां बाह्य मां अनुकूल प्रतिकूल संयोग मळे छे, ते संयोग तो आत्मा थी भिन्न छे। देखो, ये अनुकूल जो लगते अनुकूल इष्ट अनिष्ट की बुद्धि हो जाती है उसके अंदर। संयोगों से हमें भेद विज्ञान करना है, तो कौन से संयोग अच्छे हैं? अनुकूल से भेद ज्ञान आसान है कि प्रतिकूल? तो संयोग तो संयोगी है, तो कहते पुण्य और पाप के फल में अनुकूल प्रतिकूल मिलेगी संयोग, और ये फिर उसमें इष्ट अनिष्टता करता रहता है तो नए नए राग द्वेष होते हैं और नया नया बंध होता है। यानी पुण्य का फल भी अनुकूल संयोग मिलने पर भी इसके बंध की परिपाटी रुकती नहीं। ते संयोग तो आत्मा थी भिन्न छे, छता तेने सुख दुख नु कारण मानवु ते भ्रांति छे। मूल में उसको अनुकूल प्रतिकूल माना है, यही भ्रांति है, और उसको सुख दुख का कारण माना, वो भी भ्रांति है। ते भ्रांति ने लीधे अज्ञानी जीव पोतानी आत्म शांति ने खोई बैठो छे। देखो, ये तो पुण्य और पाप के फलरूप अनुकूल प्रतिकूल मिल रहे संयोग, और इसकी बाह्य प्रति अनुकूलता से मुझे सुख मिलता है, ऐसी इसकी बुद्धि है। वो क्या कर रहा है कि संयोगों को अनुकूल बनाने की कोशिश में है। उसके पुण्य नहीं होगे, पूर्व पुण्य नहीं होगे, उसका फल भी नहीं मिलेगा, तो उसके लाख कोशिश करने पर भी वो तो संयोगों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लेते पूर्व का पुण्य का उदय आ जाए और उसके कोशिश करे या नहीं करे तो भी उसके तो अनुकूलता बनी। अब उस अनुकूलता में वो ठीक ठीक अच्छा अच्छा ऐसा मानते बैठेगा तो उसके अनुकूलता मिलकर भी कुछ उसके लिए क्या फायदा है तो उससे भी नहीं, यही कहना चाहते। देखो कि भ्रांति ने लीधे अज्ञानी जीव पोतानी आत्म शांति ने खोई बैठो छे। अनुकूलता होती है तो बाह्य विषयों को और भोगने के और उसमें बुद्धि पड़ी है न? ને બાહ્ય વિષયોની પ્રીતિથી દુઃખી થઈ રહ્યો છે. અતિન્દ્રિય ચૈતન્ય વિષયને ચૂકીને બાહ્ય ઇન્દ્રિય વિષયોમાં મૂર્છાઈ ગયો છે, તેથી બહિરાત્મા નિરંતર દુઃખી છે. હમે લગતા જિસકો અનુકૂળતા હૈ વો તો સુખી હોગા, વો તો વિષયો કી ચાહ મે જલ રહા હૈ સ્વયં. જૈસે હમ દેખતે સ્વર્ગો મે તો સારી અનુકૂળતા હૈ ના, કમ્પેરિટિવ જીવ ક્યા કરતા હૈ, સોચતા હૈ અરે હમ તો મનુષ્ય હૈ, હમકો તો કામ કરકે પૈસા ના કમાના પડતા હૈ, પૂરી દિન મહેનત કરો ફિર પૈસા મિલેગા, ફિર ઉસકી ચિંતા સબ, વહાં તો અચ્છા હૈ, સબ કુછ મિલ જાતા હૈ કલ્પવૃક્ષો સે, બિના માંગે ભી મિલ જાતા હૈ, યાની વહાં સુખ હૈ એસી ઉસકી કલ્પના હૈ, માન્યતા હૈ. તો કહેતે પરંતુ વહાં દેવ ક્યા કર રહે, બાહ્ય વિષયો કે ભોગને કી ઈચ્છા, યાની વો સાગરો કી ભલે આયુ હો યા પલ્યો કી હો, તો ઉસકો ભોગને કી ઈચ્છા તો ચલ રહી કે નહીં ચલ રહી, ઓર વહાં પર ભી રાગ દ્વેષ હોગે કે વિતરાગી હો જાયેંગે, એક દૂસરે કે પ્રતિ જો ઈર્ષા ભાવ હૈ વો તો હોતા હી વહાં પર ભી રહેતા હૈ. તો કહેતે નિરંતર દુઃખી હૈ, મારા પરમાનંદની શક્તિ મારા આત્મામાં જ ભરી પડી છે, ઇન્દ્રિયના બાહ્ય વિષયોમાં મારું સુખ નથી, એવી અંતર પ્રતીતિ કરીને એ દૂસરેને બતાયા તો ઉસકી પ્રતીતિ નહીં હોતી, કહેતે સ્વયં ઉસકી પ્રતીતિ કરે તો ધર્માત્મા અંતર્મુખ થઈને આત્માના અતિન્દ્રિય સુખનો સ્વાદ લે છે. જેમ લીંડી પીંપળના દાણે દાણે 64 પોરી તિખાસની તાકાત ભરી પડી છે ભરી છે, તેમ પ્રત્યેક આત્માનો સ્વભાવ પરિપૂર્ણ જ્ઞાન આનંદથી ભરેલો છે. ઉસમે ભી પરિપૂર્ણ શબ્દ લગાયા, સ્વભાવ તો પરિપૂર્ણ હોતા હૈ, ઉસમે કોઈ અધુરાશ નહીં હોતી, કોઈ લિમિટ નહીં હોતી, પણ તેનો વિશ્વાસ કરીને, એ મુખ્ય વાત હૈ, ઉસકા વિશ્વાસ હી નહીં હૈ, તેમાં અંતર્મુખ થઈને એકાગ્ર થાય. દેખો હૈ તો સબસે સરળ માર્ગ, જીવ ઇતના હી કર સકતા હૈ, અન્ય પર પદાર્થ મેં કુછ કર હી નહીં સકતા, ફિર ભી રાત દિન ઉસી મેં માથા મારતા રહેતા હૈ. તો કહેતે કે તેનો વિશ્વાસ કરીને તેમાં અંતર્મુખ થઈને એકાગ્ર થાય તો તે જ્ઞાન આનંદનો સ્વાદ અનુભવમાં આવે છે. પર્યાય રાગ કી તરફ ઝુકતી રહેતી હૈ તો રાગ તો સ્વયં દુઃખમય હૈ, તો વો સ્વયં પર્યાય મેં દુઃખ કા વેદન હોતા રહે. યે સ્વભાવ સુખરૂપ હૈ, સ્વભાવ મેં એકાગ્ર હોને સે પર્યાય મેં ભી વો ઉસકા વેદન હો જાયેગા આનંદ ઓર સુખ કા. આત્માથી બાહ્ય વિષયોમાં ક્યાંય આત્માનો આનંદ નથી. ધર્મી પોતાના આત્મા સિવાય બહારમાં ક્યાંય સ્વપ્ને આનંદ માનતા નથી. આવા અંતરાત્મા પોતાના અંતર સ્વરૂપમાં એકાગ્ર થઈને પરિપૂર્ણ જ્ઞાન આનંદ પ્રકટ કરીને પોતે જ પરમાત્મા થાય છે. સર્વજ્ઞ હોવા છતાં જ્યાં સુધી શરીરાદિ સહિત છે ત્યાં સુધી તે અરિહંત સકલ પરમાત્મા છે, અને પછી શરીર રહિત થઈ ગયા તે સિદ્ધ નિકલ પરમાત્મા છે. અરિહંત અવસ્થા મેં સે વો કર્મ ઓર શરીર નિકલ જાયેંગે, ફિર દુબારા જન્મ કા યે લેના નહીં હોગા, ઉનકા જન્મ કા અભાવ હો જાતા હૈ ના. એ રીતે બહિરાત્મા અંતરાત્માને પરમાત્માનું સ્વરૂપ કહ્યું તે જાણીને મોક્ષાર્થીએ અંતરાત્મારૂપ ઉપાય વડે પરમાત્માપણું સાધવું ને બહિરાત્માપણું છોડવું. એ અવસ્થાઓ કી બાત હૈ ને, ઇસે પના શબ્દ લગાયા. આ સમાધિ શતક છે. સમાધિ એટલે શું? આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ રહિત. ક્યાં ક્યાં લિખા હૈ એ? આધિ ક્યાં હોતી હૈ ઓર વ્યાધિ વ્યાધિ ક્યાં હોતી હૈ? વ્યાધિ અને વો તો રોગ. હા, આધિ અને વો માનસિક જો ચિંતાએ હોતી હૈ, આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ. ઉપાધિ ભી હમ કહે ને વો ક્યાં સબ કટકટ હૈ. હા, હેડેક હેડેક હેડેક. આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ રહિત આત્માની સહજ શાંતિ તે સમાધિ છે. કિતને એક વાક્ય મેં બતા દિયા ઉન્હોને. અચ્છા, અથવા સમય દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર તે સમાધિ છે, અથવા નિર્વિકલ્પ આનંદના અનુભવમાં લીનતા તે સમાધિ છે. તે સમાધિ કેમ થાય? કે દેહાદિથી ભિન્ન જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ આત્માનું ભાન કરીને તેમાં એકાગ્રતાથી સમાધિ થાય છે. આત્માને દેહાદિથી ભિન્ન ન જાણે ને રાગાદિ વાળો જ જાણે તો તેને સમાધિ થતી નથી, ક્યોંકિ ઉસને રાગ ઓર જ્ઞાન કો એકમેક કરકે જાના, આત્મા કો રાગ વાલા જાના. પણ ભ્રાંતિ થાય છે, એવી ભ્રાંતિ તે બહિરાત્મ દશા છે. એને પહેલે મેં પહેલે આગમ કે દ્વારા નક્કી કરના હૈ, ફિર યુક્તિ ઓર અનુમાન જિસકો કહેંગે ઉસમે એને તત્વ નિર્ણય તક પહોંચના કે બાત હમ કહેતે હૈ, ઉસકે બિના યે એકાગ્રતા નહીં હોગી. અનુભવ તો તબ તક નહીં હોગા, ભલે કોઈ શ્વાસ પર એકાગ્ર હો રહા હૈ, કોઈ અન્ય કહીં એકાગ્ર હો રહા હૈ, પરંતુ વો તો આત્મા કા અનુભવ રૂપ વો એકાગ્રતા નહીં હોગી. લોક કહેતે થોડી પ્રેક્ટિસ તો હો જાતી હૈ એકાગ્રતા કી, તો એકાગ્રતા તો હમ બહોત જગે કરતે હૈ ના, જિસમે રુચિ હૈ ઉસમે એકાગ્ર હોકર સબ કુછ કરતે રહેતે હૈ. વો એકાગ્રતા કી પ્રેક્ટિસ નહીં કરની હૈ, યહાં તો તત્વ નિર્ણય કી મુખ્યતા હૈ. પ્રેક્ટિસ હૈ પહેલે સે, ક્યોંકિ જિસમે રુચિ હૈ ઉસમે તો એકાગ્ર હોતે રહેતા હૈ. તો કહેતે સિદ્ધ સમાન જ્ઞાન આનંદ થી પરિપૂર્ણ દેહાદિથી ભિન્ન એવા આત્માની અંતરદૃષ્ટિ જઈને છે તે અંતરાત્મા છે. દેહ હું રાગ હું એવા પરમા આત્માના સંકલ્પ વિકલ્પથી જે રહિત છે, એ ઉસને સંકલ્પ ઓર વિકલ્પ મેં હી વો માન લે. વો તો કભી શરીર સે એકમેક હુઆ હી નહીં હૈ, અનાદિ સે અનેક દેહ ધારણ કરને પર ભી વો કભી દેહરૂપ હુઆ હી નહીં, ક્યોંકિ દેહ તો અચેતન હૈ, પુદગલ હૈ, ઓર યે તો જીવ દ્રવ્ય હૈ. એક દ્રવ્ય કભી દૂસરે દ્રવ્ય રૂપ હો હી નહીં સકતા. કહેતે કે ઉસને ક્યા ક્યા અભી તક સંકલ્પ વિકલ્પ મેં હી ઉસને દેહ મેં હું રાગ મેં હું એસે પર મેં હી આત્મા કા સંકલ્પ કર લિયા, માન લિયા ઉસને. એસે સંકલ્પ વિકલ્પ સે જો રહિત હૈ, યા લિખને લખ્યું ને આત્માના કેવા એવા પરમા આત્માના સંકલ્પ વિકલ્પથી જે રહિત છે ને નિર્વિકલ્પ પ્રતીત સહિત છે તે અંતરાત્મા છે. પછી ચૈતન્યમાં લીન થઈને જેમણે કેવળ જ્ઞાનને પરિપૂર્ણ આનંદ પ્રકટ કર્યો તે પરમાત્મા છે. એવી પરમાત્મા દશા પરમ ઉપાદેય છે. અંતરાત્મા તો પ્રકટ કરને યોગ્ય, વો ઉસકો ઉપાય હૈ પરમાત્મા બનને કા, ઇસલિયે અંતરાત્મા પણા પ્રકટ કરો એસા કહેતે. ચૈતન્ય સ્વભાવને દેહાદિથી ભિન્ન જાણીને તેના અવલંબને સર્વજ્ઞતા ને આત્માનો સ્વાધીન અતિન્દ્રિય આનંદ ભગવાને પ્રકટ કર્યો. જે કૈસા હૈ વો અતિન્દ્રિય આનંદ તો સ્વાધીન હૈ, સ્વયં હી પ્રકટ કર સકતા હૈ. ઇતના હી કરના હૈ, હમ જૈસા સ્વભાવ હૈ વૈસા નક્કી કરના હૈ. તે ભગવાન પરમાત્મા સર્વજ્ઞ વિતરાગ અને પરમ હિતોપદેશક છે. આનંદથી ભરેલા નિજરસનું પાન કરે છે. આત્મામાંથી જ ઉત્પન્ન એવા પરમ સ્વાધીન અનંત સુખના ભોગવટામાં સદાય લીન છે. દેખો હમ ઉનકો નમસ્કાર ભી કરતે હૈ તો હમ ભી ઉન જૈસે બન સકતે હૈ, ક્યોંકિ ઉનકી ભી પૂર્વ અવસ્થા હમારી જૈસી થી. ઉન્હોને ભી સ્વયં બહિરાત્મ દશા કો છોડકર અંતરાત્મ દશા પ્રકટ કરકે અભી પરમાત્મા હુએ, હમ ભી ઉન જૈસે બન સકતે હૈ, ઇસલિયે વો હમારે આદર્શ હૈ. ઓર ઉન્હોને જો ઉપદેશ દિયા અરિહંત ભગવાન ને, ઉસ પર હમકો ચલના હૈ, ક્યોંકિ ઉન્હોને માર્ગ વિધિ સારે બતા કે ગયે. તો આત્મામાંથી જ ઉત્પન્ન એવા પરમ સ્વાધીન ઓર વો થોડા સુખ ને અનંત સુખોના ભોગવટામાં સદાય લીન છે, નિરંતર હર સમય. જો ભગવાન પરમાત્મા કેવા છે, સર્વજ્ઞ વિતરાગ પરમ હિતોપદેશી છે. પોતે સર્વજ્ઞ વિતરાગ થયા ને બીજા જીવોને પણ અંતરંગ સ્વરૂપના અવલંબને સર્વજ્ઞ વિતરાગ થવાનો જ ઉપદેશ આપ્યો. અભી જો ઉપદેશ જબ નિકલા ઉનકા તભી તો કોઈ ઈચ્છા નહીં થી કે સબ જીવ એસા બન જાવે. હા, પૂર્વ અવસ્થા મેં તો એસા વિકલ્પ થા, જબ કર્મ કા બંધ થા, એને હમ કહેંગે તીર્થંકર પ્રકૃતિ બાંધી. यानी ये सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि पूर्ण वितराग और सर्वज्ञ होने के बाद भी उनका ये उपदेश मिल जाता है। यानी कितनी अलौकिक बात हो जाती है। महाविधेय में अत्यारे सिमंदर परमात्मा साक्षात विराजे छे, समोसरण में तेओनो एवो उपदेश छे कि तमारो स्वभाव परिपूर्ण ज्ञान ने आनंद स्वरूप छे, राग नो एक अंश पण ज्ञान स्वभाव में नथी। आवा स्वभाव नो अवलंबन करो। देखो, स्वभाव का अवलंबन करने पर राग अपने आप जो यथायोग्य मिट जाएगा, क्रम से जितना जैसे हम इतना है। परंतु यहाँ तो पहले में पहले उपदेश किसका दिया जाता है, राग को कम करो। कहीं पर जाओ आप, यही उपदेश मिलेगा। भगवान नो उपदेश वितरागता नो छे, राग राखवानो भगवान नो उपदेश नथी। जो राग थी लाभ थाय तो भगवान पोते राग छोड़ीने वितराग केम थया, और वो होने का भी यानी वो छोड़ने का भी तरीका क्या है, विधि क्या है, स्वभाव का अवलंबन, स्वभाव सन्मुखता। अने जे वितराग थया छे ते राग थी लाभ थवानो केम कहे, राग थी लाभ थाय एवो भगवान नो उपदेश छे ज नहीं। पुण्य करते रहो तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा नहीं उपदेश। राग थी लाभ थाय एवो उपदेश ते हितोपदेश नथी, पण अहितोपदेश छे। केम के राग तो अहित छे, हित तो वितरागता छे। आत्मा परनो करे एम जे माने ते परनो राग केम छोड़े, अथवा परथी आत्मा ने लाभ माने तो ते परनो राग केम छोड़े। दोनों ओर से पर का करता है, कर सकता है, तो पर में करने धरने की बुद्धि रहेगी तो राग तो रहेगा, द्वेष राग सब कुछ रहेगा। राग कहने से राग द्वेष सब समझ लेना, सारे कषाय लेना। यानी परथी आत्मा ने लाभ मानो तो परनो राग केम छोड़े, क्योंकि निमित्त से मेरा कार्य होगा तो निमित्त की ओर तो देखता रहेगा हमेशा। अने राग थी जे लाभ माने ते पण राग ने छोड़वा के जे वो केम माने, तीन बातें बताई। आत्मा पर का करता है ऐसा जो मानता है वो पर का राग उसका नहीं छूट सकता, या पर से मेरा कुछ लाभ होता है मानता है वो भी पर का राग उसका छूटेगा नहीं, या राग से ही जो लाभ मानता है वो भी राग से उसमें छोड़ेगा, क्योंकि वो तो लाभदायक है। यानी वो राग को छोड़ने जैसा नहीं मानते, मान्यता के अभिप्राय की बात ले रहे। राग होता है अभी नहीं छूट रहा है वो बात अलग है, पर्याय में राग होते हुए भी वो कार्यकारी नहीं है, लाभदायक नहीं है, मेरे से भिन्न है, इतना नक्की करना है पहले में पहले। राग ने जो आदरणीय माने छे ते राग रहित वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा ने ओळखतो ज नथी। सर्वज्ञ देवे आपेला हितोपदेश ने ते समझतो नथी। भगवान तो परम हितनो ज उपदेश देनारा छे। बंधनु ने अहितना कारणोनु ज्ञान करावे छे, पण तेनु ज्ञान करावीने ते छोड़ावे छे, ने हितना कारण रूप सम्यक दर्शनादि प्राप्त करावे छे।
यहाँ जो ऊपर बात आई है, या अभी जो पैराग्राफ पढ़ रहे थे उसकी फर्स्ट लाइन में, आत्मा परनु करे एम जे माने ते परनो राग केम छोड़े, या उसके आगे लिखा है परती आत्मा ने लाभ माने वगैरह वगैरह। यहाँ एक ही बात है कि अगर हम ये नक्की करते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणाम नहीं करता है तो राग उठने का कारण ही नहीं है।
अभी सुनाई दे रहा है क्या? हेलो, सुनाई दे रहा है?
हेलो, देखो यहाँ पर हम जब नक्की करते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, ये मूलभूत बात अगर हमारे ध्यान में आती है तो पर मेरा भला करे, भगवान मेरा भला करे, ये भावना उठेगी नहीं, ये कहना चाहते हैं। परती आत्मा ने लाभ माने तो ते परनो राग केम छोड़े, यानी राग की अपेक्षा से बात की है, लेकिन उसकी मूल में भूल क्या हो रही है कि वह एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ये मान्यता से अभी दूर नहीं हुआ है, उसी मान्यता में अटका हुआ है। तो सब लेना, आत्मा परनु करे एम जे माने ते परनो राग केम छोड़े, और पर मेरा भला करता है तो उसको काय को छोड़ेगा, उसके प्रति राग तो रहेगा ही रहे। बहुत ही मतलब इतनी एक दूसरे से संबंधित बातें हैं, गुरुदेव उसमें से बातें निकाल पाते हैं।
और राग से लाभ बांधता है ना, देखो अभी ये तो आगम से सीख गया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है। ये मंदिर का यहाँ निर्माण हुआ, हमने तो नहीं किया, मैंने शुभराग तो किया ना, किसमें? वो कैसे बुद्धि उसकी, राग में। वो मेरा निमित्त तो है ना, यानी मैं निमित्त तो हूं ना कहकर भी किसी ना किसी रूप में कर्ता बनना चाहता है, या तो राग का कर्ता या परद्रव्य का कर्ता। मैंने कुछ नहीं किया पर निमित्त तो हूं ना मैं, इस तरह से यानी निमित्त से कार्य होता है, ऐसा कहीं ना कहीं मान्यता पड़ती है।
ये क्या बोले, समझे कि नहीं? मैं बार बार लक्ष्मी को बोलता था कि मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ, और मंदिर बन गया। यह मंदिर लक्ष्मी ने बनाया, जो भी आपको लेना है। और हमने कहा कि देखो, हमने कहा इसलिए हुआ कि नहीं, ऐसा बताना चाहता।
अभी आगे पढ़ेंगे। जो आजे ग्रंथादिरा समय सारणी प्रतिष्ठानों दिवस छे, 18 वर्ष पहला एटले 2064 मा आ जैन स्वाध्याय मंदिर नु उद्घाटन थयुं। सोनगढ़ की बात है ये। त्यारे अहीं समय सारणी विधि पूर्वक प्रतिष्ठा थई छे। समय सार एटले शुद्ध आत्मा, शक्तिपणे दरेक आत्मा शुद्ध स्वभावथी परिपूर्ण कारण समयसार छे। देखो समयसार किसको कहा? शुद्ध आत्मा को। और दरेक यानी शक्तिपणे दरेक आत्मा शुद्ध स्वभाव से परिपूर्ण है। जैसे स्वभाव परिपूर्ण शुद्ध है, ऐसे पर्याय में भी हो सकता है। तो पर्याय में परिपूर्ण हो जाए तो उसको हम कार्य समयसार, और उसका कारण जो है स्वभाव रूप जो शुद्ध आत्मा है उसको कारण समय सार, तेने कारण परमात्मा कहे। कारण समय सार कहो या कारण परमात्मा कहो, एक ही बात है। क्योंकि यहाँ शुद्ध आत्मा को तो समय सार कहा था, और उसका जो कारण है कि शक्ति रूप जो स्वभावती परिपूर्ण है उसको कारण समय सार कहा। ते कारण समय सार स्वरूप शुद्ध आत्मा नु स्वरूप आ समय सार बतावे। ये जो ग्रंथराज समय सार है वो तो वो अपने शुद्धात्म स्वरूप को बताने वाला है। अनेते कारण समय सारणी दृष्टि करता तेना आश्रय, कारण समय सारणी अपने शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा जो है उसके दृष्टि करनारी वही मैं हूँ। मैं पना इसमें एक रूप जो स्वभाव भाव है उसमें स्थापित करने से, तेना आश्रय यानी उसी में एकाग्र होते रहने से, अनंत चतुष्टय स्वरूप कार्य परमात्मानु कार्य परमात्मा पणु यानी अवस्था खिली जैसे यानी वो पर्याय प्रकट होगी विकसित होगी। ते कार्य समयसार छे। आवा कारण समयसार शुद्ध आत्मानी जेने श्रद्धा ज्ञान ने रमणता करी तेने पोताना आत्मामा भगवान समयसारनी स्थापना के। क्योंकि जिसने उसके ज्ञान श्रद्धा रमणता करी उसके लिए वो कारण है, कारण समय सार है। तेना निमित्त रूप समय सारनी स्थापना नो आ दिवस छे। यानी जो समय सार शास्त्र वहां सोनगढ़ में स्थापित हुआ था, उसकी तो विधि पूर्वक प्रतिष्ठा की थी, उसका ये दिवस है। भगवान ने दिव्य ध्वनि मां कहलो उपदेश, कुंद कुंदाचार्य देवे आ समय सार मां गूंथ्यो छे। सीमंदर परमात्मा महाविदेह विदेहे तीर्थंकरपणे साक्षात विराजे छे। तेमनी तथा तेमना समोसरण नी अहीं स्थापना छे। वहां एक समोसरण मंदिर भी है। आप गए थे के सोनगढ़ में? नहीं गए। अने ते भगवाने दिव्य ध्वनि मां जे कह्यूं ते आ समय सार मां कुंद कुंदाचार्य देवे भर्यू छे। भव्य जीवो पर तेमनो मोटो उपकार कर्यो छे। कुंद कुंदाचार्य देव अहीं थयेला एने यहां भरत क्षेत्र में भरत भूमि में विदेह गयेला, दिव्य ध्वनि लावेला ने आ समय सार रच्यो। ते अंतरना कारण समय सार नू वाचक छे। वाचक एने बताने वाला, शब्द होते वो वाचक होते हैं, पदार्थ है उसका वाच्य है। जैसे आत्मा ये शब्द यहां लिखा वो क्या है? वाचक है। किसको बताते हैं? आत्मा को बताते हैं। हाँ, समय सार ग्रंथ है, उसमें शुद्ध आत्मा कैसा है ये बताया है। तो ग्रंथराज समय सार है, वो वाचक है, उसका वाच्य पदार्थ जो है उसको हमें ज्ञान में लेना है ना। यहाँ क्या कहते, देखो फिर से, आ समय सार रचुते अंतरना कारण समय सार नु वाचक छे, यानी शुद्धात्म स्वभाव का वो बताने वाला है। नेते कारण समय सारना आश्रय कार्य समय सार थवाय छे। द्रव्य श्रुत रूप जो समय सार है, हमारे सामने हाथ में है, वो द्रव्य समय सार, वो वाचक है। वो किसको बताता है? कारण समय सार को बताता है। और कारण समय सार का जो आश्रय करता है उसका कार्य समय सार प्रकट होता है। आम त्रण समय सार थया, एक कारण समय सार, तेना आश्रय थतु कार्य समय सार, अने तेना वाचक रूप आ परमागम समय सार। आवा शुद्ध समय सार ने ओळखीने आत्मा माते समय सार ने स्थापना करे, क्या कहते हैं? वो केवल हमने ग्रंथराज की बहुत विनय की, नमस्कार किया, रोज उसको पढ़ा, तो कहते कि उसमें जो मार्ग बताया है उसको हमें अपनाना चाहिए। इसलिए कहते कि आवा शुद्ध समय सार ने ओळखी ने, वो युक्ति आगम अनुभव वो सबसे ओळखी ने आत्मा माते समय सार ने स्थापना करे तो तेना आश्रय मोक्षना कारण रूप समय दर्शन आदि प्रगटे। ते समय दर्शन आदि पर्याय रूप मोक्ष मार्ग ने पण कारण समय सार कहेवाय छे, केम के ते मोक्षनु कारण छे। देखो यहाँ तो परमात्मा जो कार्य परमात्मा है उसको भी कार्य समय सार कहेंगे और कारण समय सार तो शुद्धात्मा को कहेंगे, परंतु यहाँ जो मोक्ष के पूर्व की पर्याय कौन सी? मोक्ष मार्ग, उसको भी कारण कह दिया है। जैसे अंतरात्मा को परमात्मा का कारण बताया, परमात्मा अवस्था है और अंतरात्मा भी अवस्था है, वो पूर्व अवस्था है, तो वो प्रकट होने के पश्चात परमात्मा दिशा प्रकट होती है, इसलिए उसको भी कारण कहा था। उसी अपेक्षा से यहाँ कह रहे हैं ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो पर्याय है उसको भी कारण समय सार कहा, क्योंकि वो तो यानी परमात्मा दशा का वो कारण है। इसलिए केम के ते मोक्ष नु कारण छे। हाँ, अपूर्व छे, अपूर्व ने पूर्वे कदी आवा आत्मानी श्रद्धा के ओळखाण करी नथी। अर्यंत परमात्मा थया ते तो कार्य परमात्मा छे, ने ते कार्य नु जे कारण छे ते त्रिकाली कारण परमात्मा छे। वो त्रिकाली ने अनादि अंत विद्यमान है ही है और एक रूप है, उसमें कोई वधघट नहीं होती है। पहला तबक्के आ वात सांभळता बहुमान लावीने हा पाड़े ने तेनो निर्णय करीने विश्वास करे ते धर्मनी अपूर्व शुरुआत छे। पहले विरोधात कैसे कैसे हाउ इज इट पॉसिबल करके चालू करेगा, समझने के लिए पूछना अलग बात होती है। जिज्ञासा चाहिए कि अरे मेरा ऐसा स्वरूप है और मुझे जानना ही है। ज्ञान स्वभाव नु लक्ष्य करवूं तेज परम हितनो मार्ग छे, एवा हितनो ज उपदेश भगवाने कर्यो छे। एटले के ज्ञान स्वभाव तरफ फळवानो ज भगवाननो उपदेश छे, पराश्रयनो भगवाननो उपदेश नथी, ते तो छोड़वानो भगवाननो उपदेश छे। भगवान ऐसा नहीं कहते वो हमारे ही शरण आ जाओ और हम आपका कल्याण करेंगे, वो तो निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ा रहे हैं। कहते ना पराश्रय नो भगवान उपदेश ही नहीं, वो तो छुड़ाने का उनका उपदेश है। पहला आओ निर्णय करे तेने भगवान परमात्मा ने अने तेमना हितोपदेश ने जानियो छे, तभी उन्होंने उनका सच्चा बहुमान किया। जैसा उन्होंने उपदेश किया वैसे हम अनुसरण करेंगे, अंगीकार करेंगे, तो ही हमने उनका विनय किया। पण रागादिथी लाभ माने तो तेने हितोपदेशी सर्वज्ञ वितराग परमात्मा ने मान्या नथी, तेमना उपदेश ने जान्यो नथी। अर्यंत परमात्मा हजी देह सहित छे, तेओ दिव्य ध्वनि थी उपदेश आपे छे, अने सिद्ध परमात्मा देह रहित थई गया छे। તેઓ લોકાગ્રે બિરાજમાન છે. તો અરિહંત ભગવાન કહાં બિરાજમાન હૈ રૂમાં? સિદ્ધ ભગવાન તો લોકાગ્ર પર હૈ ઓર અરિહંત સમો શરણ મેં હોતે હૈ. દૂસરે કોઈ નહીં હો સકતે અરિહંત? હા, તો કહાં બિરાજમાન હૈ બોલો. પૂરે મધ્ય લોક, એક રાજુ તક, મનુષ્ય લોક મેં કહો. મનુષ્ય લોક કે બહાર તો જા, ત્રસ્પર્યા ને ત્રસ્પર્યા સર્વત્ર હોતી હૈ. ત્રસ નાલી તક મનુષ્ય નહીં જા સકતે. હા, ઢાઈ દ્વીપ 45 લાખ યોજન કી હૈ, ત્રસ નાલી તો પૂરે એક રાજુ કી હૈ. એસી છોડી મધ્ય લોક એસા ગયો, વહાં તિર્યંચ હૈ, વહાં મનુષ્ય નહીં હૈ. અભી આપકો સુબહ સુનના પડેગા, ક્યા કરે. આ સુબહ વાત આઈ ને, એ મનુષ્ય લોક મેં દો સમુદ્ર હૈ, કૌન સે? લવણ સમુદ્ર ઓર કાલો દક સમુદ્ર, ઓર લાસ્ટ વાલા વો સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર. બીચ વાલે સભી સમુદ્રો મેં ઓર દ્વીપો મેં જગન્ય ભોગ ભૂમિ હૈ. હા, ઓર તિર્યંચ રહેતે વહાં પર સંગી પંચેન્દ્રિય, વહાં કોઈ વિકલેન્દ્રિય ભી નહીં હૈ.
વહાં કે જલ મેં જલચર જીવ નહીં,
જલચર તો હૈ નહીં, સમુદ્ર મેં કોઈ જીવ નહીં હૈ વહાં પર. હા, ભોગભૂમિ મેં તો સંગી પંચેન્દ્રિય હો ગયે, અસંગી ભી નહીં હો ગયે. ઓર સારે મરકર દેવ મેં જાને વાલે, મનુષ્યો કો કિતના નંબર લગેગા દેખો. અરે લગને સે ક્યા હોને વાલા. આગે મનુષ્ય રહેંગે યહાં. વો કહેતે વહાં કે મિથ્યા દૃષ્ટિ જો હૈ ના, વો તો સારે જાતે હૈ વહનત્રિક મેં જાતે હૈ. ઓર સમય દૃષ્ટિ સૌધર્મ ઈશાન, ઉપર કોઈ નહીં જાયેગા વહાં કા. કર્મભૂમિ કે જીવ જા સકતે ને ઉપર, તિર્યંચ ભી 16વે સ્વર્ગ તક જા સકતે. કર્મભૂમિ કે એ સ્વયંભૂ રમણ વાલે તિર્યંચ ભી જા સકતે હૈ વહાં પર. બીચ વાલે સમુદ્રો મેં, એ તીન સમુદ્ર કો છોડકર બીચ વાલે સમુદ્રો મેં કોઈ જલચર નહીં હૈ. ક્યા 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 ફિર સે? દ્વીપો મેં રહેંગે. હા, વો તિર્યંચ મેં હોગે, હોગે ઉસમે, પતા નહીં હોગા ઉનમે ભી.
ક્યા ક્યા પ્રશ્ન હૈ ઉનકા?
તિર્યંચો મેં ભી જુગલિયા હોગે ના, ઉનકી વિશેષ વર્ણન નહીં આતા હૈ. હા, આગે.
અરિહંત પરમાત્મા,
અરિહંત પરમાત્મા હજી દેહ સહિત છે, તેઓ દિવ્ય ધ્વનિથી ઉપદેશ આપે છે, અને સિદ્ધ પરમાત્મા દેહ રહિત થઈ ગયા છે, તેઓ લોકાગ્રે વિરાજમાન છે. અરિહંત અને સિદ્ધ પરમાત્મા ઇન્દ્રિય વિષયો વગર નિજાનંદનો અનુભવ કરે છે, ઓર ઉનકે સામને જાકર હમ ઇન્દ્રિયો કે વિષયો કી માંગ કરતે હૈ. એ મેરી એ ઈચ્છા પૂરી હો જાય, કોઈ જાકે એ નહીં કહેતા કે મેં ઈચ્છા રહિત હો જાઉં. ઈચ્છા કે પૂર્તિ કી ભાવના કરતે ભગવાન કે સામને જાકે. હા, વો ભી ઈચ્છા નહીં હોગી સહી રૂપ મેં, તો ઉસકી ભી ઈચ્છા નહીં હોગી. હા, આવા ભગવાનના આનંદને ઓળખે તો આત્માના આનંદ સ્વભાવની પ્રતીત થઈ જાય, અને ઇન્દ્રિય વિષયોમાંથી સુખબુદ્ધિ ઉડી જાય. દેખો પહેલે મેં પહેલે માન્યતા મેં હો જાયગી, ઉસકી માન્યતા થી ને ઇન્દ્રિય વિષયો મેં સે સુખ મિલતા હૈ, એસી માન્યતા થી. અબ માન્યતા ચલી જાયગી, સમય દૃષ્ટિ હો જાયેગા, અભી ઇન્દ્રિયો કે પ્રતિ કા ઉસકા જો લક્ષ્ય યા રાગ વો અભી છૂટેગા નહીં. ભૂમિકા કે અનુસાર જબ તક મુનિ નહીં હો જાતા હૈ તબ તક કુછ ના કુછ ઉસમે રહેગા, પણ અભી ઉસમે સે સુખ બુદ્ધિ ઉડ ગઈ હૈ. ભગવાન સાદી અનંત પોતાના અતિ ઇન્દ્રિય આનંદ રસનું પાન કરે છે. સાદી અનંત, કલ વાત આઈ હતી ને, એક બાર શરૂ હુઆ તો અનંત કાલ તક એ વાત ચાલી રહી ગઈ. કૃતકૃત્ય પરમાત્મા છે, કરને જૈસા કાર્ય કર લિયા એટલે ઉસકો કૃતકૃત્ય કહેતા. પોતાના અતિ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ને આનંદના ભોગવટા સિવાય બીજું કોઈ કાર્ય તેમને રહ્યું નથી. લોકો કુછ કરના નહીં ધરના નહીં તો ક્યાં મજા, એસા લોકો પૂછતે ભી હૈ, ક્યોંકિ કુછ ખટપટ કીએ દૂસરે મેં કુછ હેરાફેરી કરે તો મજા આતી ઉનકો. આત્માની શક્તિમાંથી આનંદ ઉછળ્યો છે તેના અનુભવથી પરમાત્મા કૃતકૃત્ય છે. દેખો કૈસે શબ્દ હે, આનંદ ઉછળ્યો છે જેથી અંદરથી આનંદ. આવી કૃતકૃત્ય પરમાત્મા દશા જ જીવને પરમહિત રૂપ છે અને તે જ સર્વ પ્રકારે ઉપાદેય છે. એ રીતે બહિરાત્મા અંતરાત્માને પરમાત્માનું સ્વરૂપ કહ્યું તે જાણીને બહિરાત્મપણું છોડો ને ભિન્ન આત્માના ભાન વડે અંતરાત્મા થઈને પરમાત્મા પદને સાધો એમ તાત્પર્ય છે. અભી હમ સમજ. હા હા તો ક્યાં ભૂ ભૂમિ મેં જો મનુષ્ય હે ના જુગલિયા ને ટ્વિન્સ જન્મતે હૈ ભૂ ભૂમિ
મેં.
ઉસી કો જુગલિયા કહેતે હૈ.
હા
સુશીલાબેન આપકા ક્યા પ્રશ્ન? हाँ मिथ्या दृष्टि कोई भी जा सकता है मनुष्य तीरियंश. अभी वहां जाने वाले असंख्यात है इतने, तो उसमें तो तीरियंशों की संख्या ज्यादा होगी ना. नहीं समझे मनुष्य कितने जाएंगे, गिने चुने जाएंगे क्योंकि पर्याप्त तो मनुष्य ही जा सकते हैं. तीरियंश मैक्सिमम जाएंगे वहां पर. तीरियंश ही मरकर वहां पर भी उत्पन्न हो सकते हैं ना. भोग भूमि में कौन नहीं जन्म लेते हैं? कर्म भूमि के मनुष्य और तीरियंश. भोग भूमि वाला जीव मरकर भोग भूमि में नहीं जाता. संख्या की अपेक्षा से वहाँ मैक्सिमम कौन जाएंगे? तो तीरियंश जाएंगे. ना देव उसमें जा सकते हैं ना नारकी जा सकते हैं. मिथ्या दृष्टि ही उसका बंद करते हैं कोई भी भोग भूमि का.
ऐसा है कि द्वीप और समुद्र
इनका होने के बाद बोल.
द्वीप और समुद्र असंख्यात है, उसमें से द्वीप ही ले लो वो भी असंख्यात है. तो द्वीप में तीरंज रहते हैं तो एक एक दो दो थोड़ी रहते होंगे, वे भी असंख्यात होंगे.
हाँ मनुष्य तीरंज अभी बांध दिए उन्होंने उतनी होते हैं. हाँ हाँ अभी क्या बोलो? मिथ्या दृष्टि ही बंद करेंगे, ये मेरा कथन है. मनुष्यायु और तीरंजायु का बंद कौन करेंगे? मनुष्य में से कर्मभूमि के मनुष्य है वही भोग भूमि वाले तो उस वहां के आयु बांधेंगे. एक बात, समय दृष्टि होते तो देवायु बांधते, तो कौन रहेंगे बांधने वाले? मिथ्या दृष्टि रहेगी. हाँ ऐसे हो सकता है ना. हाँ हो जाएगा, परंतु तो समय तो होगा ना, उसके लिए क्षायिक की कंडीशन आवश्यक है. और क्षायिक लेके जाएगा तो ये मेरे ख्याल से ये डाई द्वीप के अंदर ही जाएगा. क्षायिक वाला उधर नहीं जाएगा. हाँ ऐसा है क्योंकि हमने पहले देखा था ना कि क्षायिक समय दृष्टि. अब महाबंध में कोई ऐसी बात आई थी उस पर से हमने डिराइव किया था, आपको याद होगा. तो उत्तम भोग में जाते हैं, परंतु कोई तो पल्ले की भी आयु बांधेगा ना. कि जघन्य भोग में क्षायिक समय दृष्टि उत्पन्न हो सकते है कि नहीं हो सकते है? क्योंकि यहाँ जब तीसरा काल आता है ये सारे खुलकर होते हैं, वो क्षायिक समय दृष्टि होते कितने? तो पूर्व भव से क्षायिक समय से लेकर यहाँ उत्पन्न हो गए हैं. उन तीरियंशों में कौन जाएगा क्षायिक समय? तो मनुष्य ही जाएगा ना जिसने पहले. हाँ क्योंकि तीरियंश समय दर्शन प्राप्त भी करेगा. किसी तीरियंश ने तीरियंशायु बांधी, बाद में समय दृष्टि हुआ, तो अभी समय के साथ तीरंश में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जा सकते क्योंकि उसको क्षायिक नहीं हो सकता. गिरेगा हो सकता है, प्राप्त करने की चांसेस है उसको. कर सकता है कर सकता है उसमें कोई, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय है. हो सकता है अभी देव भी होगी ना, देव जाएगी. अभी सिंह की पर्याय में क्या हुआ? मुनिराज ने उपदेश दिया अभी देव नरक तक जाके उपदेश दे सकते, इनको क्यों नहीं दे सकते? तो मेरा ये प्रश्न है, ये भोग भूमि जगत ने भोग भूमि वो बड़ी एरिया है कि कर्म भूमि की एरिया बड़ी है? असंख्या तो नहीं दो, बोलो ना सर। हाँ बोलो। जगन्नी हाँ ये इसी में पूछ रही हूँ आपको। देखो स्वयंभू रमण समुद्र अकेला स्वयंभू रमण समुद्र इनर सभी वो बीच वाले कर्म भूमि को लेके हुए पूरे एरिया कवर करेंगे तो उससे भी 3 लाख योजन उसमें ज्यादा मिलते दोनों ओर के मिलते अकेले। और उसके अंदर वाला जो द्वीप है उसका भी आउटर हाफ कर्म भूमि का ही है। स्वयंभू रमण द्वीप का भी आउटर हाफ कर्म भूमि ही है, वो भी उसके अंदर आ गई। बीच के ढाई द्वीप वो तो भले छोटे है 45 पर वो भी कर्म भूमि के ही है। कर्म भूमि और भोग भूमि ऐसा मैंने पूछा। और बीच वाले अपने भले असंख्या पकड़ लिए परंतु उसमें समुद्र को आउट ऑफ एक वहां तो कहीं नहीं हो गए, पानी है विकलेंद्रिय वहाँ होते ही नहीं, वहाँ पंचेंद्रिय भी नहीं होते, विकलेंद्रिय की बात ही
पानी नहीं, ईश्वरन जैसा पानी।
आज ही पढ़ा हमने। अरे पानी इटसेल्फ विकेंद्रीय है बिल्कुल, वो तो पूरे लोक में है, विकलत रहे नहीं हो गए, समुद्रों में पंचेंद्रिय भी नहीं हो गए, यानी कोई जलचर ही नहीं है, जल का ही। हाँ पूछो पूछो। क्या 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 क्या
मनुष्य
कितना ज्यादा है?
एक मिनट,
उनका प्रश्न ऐसा है हाँ
कि कर्म भूमि के मनुष्य अधिक है इन क्वांटिटी, यानी इनको तो पर्याप्त मनुष्य की ही बात कहनी है, या भोग भूमि के मनुष्य अधिक है?
भोग भूमि से सब पर्याप्त
बोलो, आप ही बोल दो।
मैंने तो जवाब निकाला है अपनी तरफ से।
हाँ हाँ निकालो, आपका क्या अनुमान है?
मोर है भोग भूमि के।
हाँ अभी उसका उत्तर भी दे दो, उसका उत्तर भी दे दो क्यों? नहीं नहीं नहीं, अरे अरे वाह, आपने अनुमान निकाला है, आपका अनुमान किस आधार पर है ये आपको बताना है। मनुष्य तो संख्या थी है, असंख्या तो लब्धि अपर्याप्त। हाँ तो बोलो अभी, वहाँ ज्यादा क्यों है?
भूमि जो है क्षेत्रफल भी ज्यादा है।
कहाँ पर ज्यादा है? कहाँ पर है?
भूख भूमि अमुक अमुक जगह पे तो था ही है, और यहाँ भी जब भी समझो के वो काल आता है भरत और ऐरावत तभी भी सभी भूख भूमि हो जाए, पहला दूसरा तीसरा काल हो जाता है तभी भी भूख भूमि, तभी तभी उसकी संख्या जो एग्जैक्टली 100 से भी ज्यादा हो जाती है। और यहाँ समझो के तभी ऐसा गुरुदेव की वाणी में आया कि ये जो भोग कर्म भूमि के मनुष्य की संख्या जो है वो बढ़ के 9999 27 बार होती है, और घट के 1111 27 बार होती है। डायरेक्ट उनका मैंने नोट किया कि उसने कहा, और उससे ही मैंने डिराइव किया था कि ये जो
वो वहां पर जाती है उसमें ज्यादा है भोग भूमि, वहाँ पर भी हीना देख होती होगी ना।
वही वही तो पता है, यहाँ जब भी 999 सबसे ज्यादा होगी कम हो जाएगी।
और ऐसा भी नहीं लेना कि पूरी उतनी फिक्स रहनी चाहिए,
मैक्सिमम
उसमें ये मैक्सिमम संख्या बताई जाती है कभी भी। दूसरा एक यहाँ यही अनुमान है, आयु वहाँ की असंख्यात वर्षों की है, संचय की अपेक्षा वहाँ जीव ज्यादा। आयु कितनी है मैक्सिमम वहाँ की? 3 पल्ले की है, और 1 पल्ले के असंख्यात भाग में भी असंख्यात करोड़ वर्ष होते हैं। और यहाँ तो 1 करोड़ पूर्व की मैक्सिमम आयु है, तो इस तरह अपन वहाँ विजय क्षेत्र में चलते रहेंगे ना, विदेश क्षेत्र में तो चौथाई काल है, वो एरिया भी बहुत बड़ी है। विदेश क्षेत्र की एरिया कितनी बड़ी है, भरत क्षेत्र से जो है उससे तो 32 गुना बड़ी है, 64 तो दोनों मिलकर उत्तर दक्षिण के मिलकर
दोनों
मिलकर 64 गुना हो जाता
है। ऐसा गिनो तो 32
एक एक विदेश सेपरेट गिनो तो पूरा विदेश क्षेत्र की एरिया 64 गुना है। देखो पूरा जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, उसके 190 टुकड़े कर दो तो एक भाग प्रमाण भरत क्षेत्र की ऐसी जीवा जिसको कहेंगे बाण होता है ना, उसकी जीवा यानी जहाँ बाण लगाते हैं, धनुष बाण में जहाँ बाण लगाते हैं वो धनुष ऐसा तो कर्वेचर है, ऐसा लंबा है वो 6 फुट वाला होगी, तो जहाँ बाण लगाकर खींचते हैं वहाँ तो 1 फुट या 1.5 फुट तो होगा वो मैक्सिमम, उतना भी नहीं होगा। ऐसे भरत क्षेत्र ऐसा है बाण के जैसे, धनुष बाण के जैसा, तो उसकी जीवा कितनी है तो 198 ऑफ 1 लाख, 1 लाख का 190वां हिस्सा होता है, और उसके 2 गुना फिर पर्वत, उससे 2 गुना जगन्य भोगभूमि, उससे 2 गुना पर्वत, उससे मध्यम भोगभूमि, उससे 2 गुना पर्वत, और फिर उससे 2 गुना वो विदेह क्षेत्र होता है, यानी 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 वहां पर भी ऐसा करते हो, और बीच वाला 32 और 32 64 होता है पूरा दक्षिण उत्तर जो भरत सॉरी विदेह मिलकर इतना बड़ा होता है, यानी एक एक विदेह क्षेत्र भी ऐसे बहुत बहुत बड़ा है इससे भरत क्षेत्र से। ऐसा कुछ नहीं है, परंतु कर्म संचय की आयु बड़ी है ना, जैसे हम कहते हैं नरकों में इतने असंख्या जीव, क्षायिक समय दृष्टि भी है, और एक क्षायिक समय तो प्राप्त तो मनुष्य पर्याप्त करते हैं, और हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव क्षायिक होते हैं, और उसमें भी क्षायिक होकर नरक में जाने वाले 2-3 ही होंगे ना, कभी कभी एक भी नहीं होगा, तो हर 6 महीने 2-3 दिन 2-3 हो जाते ही रहेगी क्षायिक समय के साथ नरक में, फिर भी असंख्यात होते हैं, यानी वहां की जो आयु है ना तो उसमें तो जाते रहते हर 6 महीने में उसमें, तो ऐसे असंख्यात 6 महीने हो जाते हैं तो वहां उनकी संख्या असंख्यात हो जाती है। इसको कहते संचय की अपेक्षा, संचय ने इकट्ठा होना इतने लंबे नहीं, तीरियन से असंख्यात है जाने वाले भी ज्यादा वही है, और वहाँ है भी उनकी संख्या तो असंख्यात है, भोग भूमि के तीरियंचों की संख्या असंख्यात है, क्योंकि 3 पल्ले में कितने तीरियंच चले, परंतु मनुष्य तो संख्यात ही हो गए वहाँ पर भी, वो असंख्यात नहीं हो सकते, क्योंकि पर्याप्त मनुष्य भोग भूमि के हो या कर्म भूमि के मिलकर भी वो संख्यात ही होते हैं। अरे भोग भूमि के क्षायिक समय दृष्टि भी वहाँ असंख्यात है, क्योंकि वो तो 2-3 2-3 हर 6 महीने में चले जाएंगे, तीरें चायु बांधने के बाद क्षायिक कर लिया तो वहाँ पर भी 3 पल्ले तो बहुत सारे संचय हो सकते।
समाधि तंत्र पेज 17
क्या 5 मिनट रहेगी, ये सुबह आना चाहिए, शाम को ये सुबह की बातें निकालते हो
बोलते इसलिए सुनते
हैं। श्लोक नंबर 6 इंटरेस्टिंग है, सुबह टाइम निकालो अभी, और सरल है अभी, उसमें कुछ खिटपिट नहीं है। हाँ।
अभी तो क्या बहू आ गई ना।
अब 6 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे हम। हाँ। तत्वाचिकाम नाम मालाम दर्शयन आह, यानी अभी वो उनके वाचक नाम बताएंगे, उनके यानी परमात्मा के वाचक शब्द बताएंगे, यानी परमात्मा को ही बताने वाले अन्य शब्द जिसको एकार्थवाची कहेंगे। निर्मल केवल शुद्धो विविक्त प्रभु क्षय परमेश्वरी परात्मेति परात्मेश्वरो जिना। मैंने गलत पढ़ा, निर्मल केवल शुद्ध विविक्त प्रभुरव्यय। मैंने वो क्या पढ़ा, परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिन। प्रभु रव्यय है, मैंने क्यों पढ़ा पहली बार, प्रभु रव्यय प्रभु हाँ वो इसमें बराबर दिखता नहीं, प्रभु अव्यय ऐसा है वो। देखो निर्मल यानी मल रहित, केवल केवल यानी शरीर आदि परद्रव्य ना संबंध थी रहित, केवल यानी ओनली सिर्फ मात्र। शुद्ध शुद्ध ने रागा थी अत्यंत रागादि थी अत्यंत भिन्न थी गया हुआ थी, परम विशुद्धि वाला विविक्त। देखो विशुद्धि शब्द है, मंद कषाय के लिए भी विशुद्धि शब्द आता है, यहाँ परम विशुद्धि का अर्थ है राग रहित हो जाना। ये कौन से अर्थ में वो विशुद्धि शब्द आता है वो हमको देख कर फिर उसका अर्थ लगाना चाहिए। विविक्त विविक्त एटले शरीर अने कर्मादिकना स्पर्श थी रहित, ये पहले प्रतिज्ञा की थी ना तीसरे श्लोक में, मैं विविक्त आत्मा का स्वरूप बताऊंगा। प्रभु प्रभु ने इंद्रादिकना स्वामी, अव्यय अव्यय एटले पोताना अनंत चतुष्टय रूप स्वभाव थी च्युत नहीं थवा वाला। आप संस्कृत में कहना चाहते हैं? देखो आप अभी देखना, जहाँ श्लोक होता है उसके नीचे टीका संस्कृत में होती है, और फिर नीचे जहाँ गुजराती में श्लोक लिखा है उसके नीचे अन्वयार्थ जो है, हाँ उस वहाँ देखना है आपको। आप संस्कृत में, अच्छा है हा? પોતાના અનંત ચતુષ્ટય રૂપ સ્વભાવથી ચ્યુત નહીં થવા વાળા, વો અવ્યય હે। પરમેષ્ઠી એટલે ઇન્દ્રાદિથી વંદ્ય, પરમ પદમાં સ્થિત ઉત્કૃષ્ટ પદમે જો રહેતે હૈ। પરાત્મા સંસારી જીવોથી ઉત્કૃષ્ટ આત્મા, ઈશ્વર અન્ય જીવોમાં અસંભવ એવી વિભૂતિના ધારક, અર્થાત અંતરંગ અનંત ચતુષ્ટય અને બાહ્ય સમોસરણાદિ વિભૂતિ થી યુક્ત। કહા લિખા હે, ઈશ્વર કે આગે यहाँ केवल अन्य जीवों में लिखा है, वहाँ आपके उसमें इंद्रादि अन्य जीव लिखे। अच्छा बराबर है, यानी स्वर्गों के इंद्रों को भी ऐसी विभूति नहीं है ऐसा कहना चाहते। यहाँ सभी जीव ले लिए उसके अंदर, जिन ज्ञानावरणादि संपूर्ण कर्म शत्रुओं ने जीतनार इति परमात्मा ये परमात्मा ना नाम छे। अभी हम यही रुकेंगे, टीका कल पढ़ेंगे। जावानी ज्ञान से सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकन सदा देत हो गुरु। मिली भाई,
नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम।